नमस्कार, मैं हूं सुमित पांडे और आप सुन रहे हैं पांडे जी पॉलिटिकल हैं। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं मनी कंट्रोल के वरिष्ठ संपादक गौरव चौधरी, और हम लोग बात करेंगे एनआरसी पर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर, जिस बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा इस सप्ताह सरकार चाहती है इस बिल को पास करा के इस पर एक कानून तैयार करे। गौरव जी, पहली बात ये बताइए कि एनआरसी का जो पहली बार देश में कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने सुना वो नॉर्थ ईस्ट या असम की, वहां सुना असम में या नॉर्थ ईस्ट में एनआरसी का जो इशू है वो कहां से उसकी उत्पन्न होता है, कहां से उसकी शुरुआत होती है?
इसमें एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। एनआरसी एक ही दफा हुआ था हिंदुस्तान में, पहले इससे पहले 1951 में, वो भी असम में ही हुआ था। एनआरसी की, इस वाले एनआरसी की कॉन्टेक्स्ट असम अकॉर्ड 1985 जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और उन दिनों के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ साइन हुआ था, उसमें यह तय किया गया था कि मार्च 24, 1971 के बाद जो भी इल्लीगल माइग्रेंट्स असम में आए हैं और रह रहे हैं, दे शुड बी फर्स्ट डिटेक्टेड, डिपोर्टेड, डिसइनफ्रेंचाइज्ड। असम अकॉर्ड का एक बहुत अहम मुद्दा था जिसको कहते हैं 4D कॉन्सेप्ट, 4Ds: डिटेक्ट, डिसएनफ्रेंचाइज, डिपोर्ट एंड डिमार्केट द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। ये सारे, ऑल द 4Ds मूव इन अ सीक्वेंस। इफ यू कैनॉट, इफ यू डोंट डिटेक्ट, यू कैनॉट डिसएनफ्रेंचाइज, एंड इफ यू कैनॉट डिटेक्ट, यू कैनॉट डिपोर्ट। तो पहले डिटेक्ट करना बहुत जरूरी था। बिटवीन 1985 एंड 2015 जब एनआरसी प्रोसेस स्टार्ट हुए, उस समय तक डिटेक्शन रेट्स वे वेरी लो। द रीजन इज, उस समय एक लॉ होता था, बिटवीन 1985 एंड 2005 देयर वाज अ लॉ कॉल्ड द आईएमडीटी एक्ट, द इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट। इट वाज एन ऑब्नॉक्सियस पीस ऑफ लेजिस्लेशन व्हिच एसेंशियली,
इट वाज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन,
इट वाज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन व्हिच एसेंशियली प्लेस्ड द बर्डन ऑफ एविडेंस ऑन द accuser, in the sense that if I am going and forming for filing a complaint that a certain person is a suspected illegal migrant, the onus is on me to prove that. So clearly I have to go and tell the tribunal and prove the furnish the evidence that a certain person is an illegal migrant. Wo kabhi hoga hi nahi, kyunki ho hi nahi sakta tha because of lack of evidence. 2005 Supreme Court struck down this law based on a petition filed by Sarbananda Sonowal, who is currently the Chief Minister of Assam. There was a group of collective of people called Assam Public Works, which filed a petition in Supreme Court demanding an NRC. The Supreme Court, then a bench headed by Ranjan Gogoi, who was not then the Chief Justice of India, ruled that NRC should be carried out in Assam. Subsequently, 2015 में NRC की प्रोसेस स्टार्ट हुई।
लेकिन अगर किसी कॉमन आदमी को समझना पड़े कि NRC क्या है, एक कॉमन आदमी या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में हो, उसको अगर कहा जाए कि देश में नेशन वाइड NRC होना है, तो उसको क्या समझेगा वो?
तो नेशन वाइड NRC तो देश में हो नहीं सकता, क्योंकि नेशन वाइड NRC के लिए बेस डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। असम में NRC इसीलिए हो सकता था और हुआ है क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, एक ही दफा इंडिया में NRC हुआ है, वो भी असम में 1951
में। क्यों हुआ
51 में NRC? इसीलिए हुआ क्योंकि 1947 के बाद, बिटवीन 1947-1951 बहुत बांग्लादेश से माइग्रेंट्स असम में आ गए थे। तो 1951 जब इलेक्टोरल लिस्ट बनाया गया था, उसी समय एक NRC का भी प्रोसेस, प्रक्रिया असम में किया गया था, जिस विच इज द बेस डॉक्यूमेंट कि 1951 में कितने लोग, विच आर द बोनाफाइड रेसिडेंट्स और सिटीजन्स ऑफ असम स्टेइंग इन 1951 ऑनवर्ड। 2019 में जो NRC कंप्लीट हुआ है वो 1951 की NRC की अपडेशन है, इट इज नॉट अ फ्रेश NRC। नाउ नेशन वाइड NRC, पूरा देश में NRC के लिए बेस डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं है। जो 1947 के बाद एंड अप टू 1965 एंड उसके बाद भी जब लोग आते रहे पाकिस्तान या
ईस्ट बंगाल से,
उनके पास बेस डॉक्यूमेंट क्या है? उनकी फोरफादर्स के नाम 1951 NRC में फीचर नहीं करते, बिकॉज दैट वॉज लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ असम। तो नेशन वाइड NRC के लिए बेस डॉक्यूमेंट क्या है? ये हम 1951 की इलेक्टोरल लिस्ट को बेस डॉक्यूमेंट मानेंगे या उससे पहले की कोई बेस डॉक्यूमेंट? एंड व्हाट इज द कट ऑफ डेट? हु इज गोइंग टू रूल ऑन इट? असम में NRC कैरी किया गया और प्रोसेस वाज लिटिल ब्यूरोक्रेटिक बट वाज मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था। नेशन वाइड NRC के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं है, इट इज चैलेंजेबल।
दूसरी चीज़ ये कि लोग थोड़ा CAB में और NRC में कंफ्यूज करते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है सरकार लेके आई है लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए, उसका क्या NRC से कोई कोरिलेशन है?
इनडायरेक्टली कोरिलेशन है। एनआरसी का प्रक्रिया जो है एक रजिस्टर ऑफ बोनाफाइड सिटीजन्स स्टेइंग इन असम एज ऑफ March 24, 1971 एंड देयर चिल्ड्रेन. एनआरसी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन धर्म के आधार पे, एथनीसिटी के आधार पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं लाते. सीएबी जो है इज प्योरली रिलीजियस. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 1955 की सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करने की एक प्रयास है. अमेंडमेंट जो ला रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि तीन देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस करने के बाद, एनीबॉडी हु हैज मूव्ड ओवर टू इंडिया, और अगर क्लेम करते कि हम इंडिया इसीलिए आए हैं कि अपने देश में, इन तीनों में से किसी एक देश में हम रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे, इसीलिए इंडिया असाइलम सीक करने के लिए आए हैं, इसके कारण हमें सिटीजनशिप देना चाहिए. और ये बिल कह रहे हैं कि नॉन, एसेंशियली नॉन मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, सिख्स, क्रिश्चियंस एंड हिंदूज, अगर वो आके क्लेम करते हैं कि हम इन तीनों देशों से आए हैं और हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहे थे, तो हमें सिटीजनशिप देना चाहिए. सरकार ये कह रही है इस लॉ के तहत उनको सिटीजनशिप देना चाहिए. दिस बिल वंस वोटेड इन टू लॉ विल बेसिकली टर्न आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स हेड, बिकॉज दैट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के आधार पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते.
नहीं, लेकिन कल जो पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट्स हुए उसमें यह कहा गया कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिजर्वेशंस, तो क्या धर्म के आधार पर वहां पर एक स्पेशल क्लॉज लगा के डिस्टिंक्शन नहीं किया गया?
दिस इज अबाउट सिटीजनशिप. सो इट इज सिटीजनशिप, नागरिकत्व जो है इज डिफरेंट फ्रॉम रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सीट्स रिजर्व होते हैं. यहाँ पे सिटीजनशिप का मतलब है अगर आप किसी एक कंट्री के, कंट्री में सिटीजनशिप मिल जाता है, इसका मतलब है आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, यू विल गेट ऑल द लीगल राइट्स. Minority reservation is limited to the institution. This, in this case, anybody can move over to India and claim that we have been, the risk is always there. Okay, hum, we have been persecuted religiously and we have moved over to India, give us give us citizenship. Based on that, there is also the risk that enemy countries or countries that want to cause instability in India can actually push people clandestinely ensure that many elements get Indian citizenship, which can carry, bring out instability in India.
So, but one of the major arguments put forth by the government, isme unhone ye kaha gaya ki ye teen aisi countries hain jo ki Islamic countries hain. They state in their constitution that we are Islamic republics. So, in these three countries at least, people who belong to a particular faith, that is who are Muslims, who follow Islam, उनका religious persecution नहीं हो सकता है. वहां पर माइनॉरिटीज जो हैं, क्योंकि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज हैं उन्हीं का रिलीजियस पर्सिक्यूशन होगा, इस वजह से इन कम्युनिटीज को हम यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं देंगे. ये एक आर्ग्यूमेंट हमें कई बार कल पार्लियामेंट में सुना.
लेकिन इसका द काउंटर टू दैट इज दैट इंडिया में सिटीजनशिप की हायरार्की बेस्ड ऑन धर्म हो ही नहीं सकता. दैट इज व्हाट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स, दैट देयर कैन बी नो रिलीजियस डिस्टिंक्शन सो फार एज सिटीजनशिप इज कंसर्न. ये जो अमेंडमेंट लाया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, सरकार ये इज ट्राइंग टू टर्न आर्टिकल 14, द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 14 ऑन इट्स हेड.
वन लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट ये जो पूरा एनआरसी सीएबी का इशू है, इट हैज अ सर्टेन रेजोनेंस इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, व्हाई इज दैट? और दूसरा, देश के दूसरे हिस्सों में आपको क्यों लगता है कि अभी उस तरह का लोगों में एंग्जाइटी या परेशानी नहीं देखने को मिलती है? हो सकता है बंगाल में हो थोड़ा, क्योंकि उन इलाकों में शायद 72 और 65 के बाद और इवन पार्टीशन के बाद काफी माइग्रेशन हुआ.
टू रीजंस, एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो विरोध हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, जो विरोध हो रहा है और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में जो विरोध हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट है. नॉर्थ ईस्ट में इट इज नॉट सीन एज अ बाइनरी हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम नॉन मुस्लिम,
इट इज मोर ऑफ कल्चरल,
इट इज अबाउट द फियर ऑफ कल्चरल एंड एथनिक इरोजन ऑफ कल्चरल एंड एथनिक आइडेंटिटी. नॉर्थ ईस्ट में देर इज पीपल टेक प्राइड इन अ वेरी प्रोग्रेसिव लिटरेचर एंड ऑल्सो देयर लैंग्वेज. सो लिंग्विस्टिकली फॉर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूँ, इन द 2011 सेंसस असम इज स्पीकिंग एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. तो 48% ऑफ असम पीपल इन असम काउंटेड देमसेल्व एज स्पीकिंग असम एज द मदर टंग. 2021 में जो जनगणना होगी उसमें शायद इससे भी बुरा होगा.
तो वहां पर भाषाई तौर पर क्या आप कह रहे हैं कि 48% एसएमई स्पीकिंग थे, सो आर यू सेइंग द मेजॉरिटी पीपल जो है वो बांग्ला स्पीकिंग निकले?
नो, देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हु आर बांग्ला स्पीकिंग, देयर आर पीपल हु स्पीक नेपली, देयर आर पीपल हु स्पीक अदर लैंग्वेजेस, बट इन द स्टेट ऑफ असम Assamese speaking is a becoming a linguistic minority is a clear a sign of cultural erosion, and people of Assam think that this is irreversible.
Okay, and the other reason you're saying, the opposition to CAB and the support for NRC are linked, isn't it?
Support to NRC has been bipartisan till such time the NRC list came out. Assam ke log yahi chahte hain ki 1985 ki jo Assam Accord sign hue the uske तहत jitne bhi log Assam mein aaye hain after March 24, 1971, regardless of religion. अवैध रूप से रह रहे हैं उनको निकाल देना चाहिए. एंड सीएबी क्या कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको लीगल स्टेटस देना चाहिए, तो वो एनआरसी का प्रोसेस को कंप्लीटली और नालीफाई कर देते हैं.
एक छोटी सी चीज और कि मणिपुर को जैसे इनर लाइन परमिट में डाला है, कुछ इश्यूज वहां रिजॉल्व करने की कोशिश की, असम के लिए कह रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल में कुछ एरियाज को लोग नोटिफाई करेंगे, इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, इसका मतलब क्या है?
इनर लाइन परमिट का मतलब यह है कि मणिपुर नाउ बाहर से लोग जाके वहां पे लैंड नहीं खरीद सकते, दे कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी एंड पोजेस एनी काइंड ऑफ सिमिलर एसेट्स. सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द ट्राइबल एरियाज जो है एक स्टेट के अंदर, दे आर प्रोटेक्टेड विद सिमिलर सेफगार्ड्स. तो सिक्स शेड्यूल के एरिया के अंदर असम में तीन एरिया है, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी एंड डिमासा. प्रॉब्लम इज इफ सिक्स शेड्यूल एरियाज आर एग्जेम्प्टेड, इनर लाइन परमिट स्टेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीएबी, जो लोग आए हैं वो सेटल कहाँ होंगे? इनर लाइन परमिट स्टेट्स में सेटल हो नहीं सकते, सिक्स शेड्यूल एरिया में सेटल हो नहीं सकते, सो कहाँ पे सेटल होंगे? 80% ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली, विच इज द नर्व सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कल्चरल एंड लिटररी प्रोग्रेस विल गेट अफेक्टेड. तो 80% ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली विल बी फिल्ड अप. देयर द फियर इज दैट जितने भी लोग आएंगे, जितने भी इल्लीगल सो फार इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं जिनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, ये 80% ऑफ दिस पीपल विल बी फिल्ड अप इन द ब्रह्मपुत्र वैली.
वन लास्ट क्वेश्चन, असम अकॉर्ड से पहले भी जब असम मूवमेंट शुरू हुआ उस टाइम भी हम देखते हैं कि यू नो अननोन फेसेस, पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ जो कल्चरल लाइफ से जुड़े हुए थे, रंगमंच से जुड़े हुए थे, सिनेमा से, आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स, उन्होंने मूवमेंट शुरू किया. पॉलिटिकल पार्टीज ने शायद उतना उसको लीड नहीं किया था, और उसकी वजह एक ये थी, कई हमने देखते हैं कि आंसू के कई स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में रहते थे वो हॉस्टल से सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में गए. क्या इस बार भी वहां के एजिटेशन जो हो रहा उसका फेस या लीडरशिप इसी तरह के लोगों में?
वेरी सिमिलर. इस बार भी जो एजिटेशन हो रहा है, जो फेस ऑफ प्रोटेस्ट है और जो नर्व सेंटर है प्रोटेस्ट का, वो दो इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट हुआ है. एक है कॉटन यूनिवर्सिटी, विच वॉज अर्लियर द कॉटन कॉलेज, एंड ऑल्सो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, बोथ आर इन गुवाहाटी. इन असम एजिटेशन जो हुआ था 1978 टू 1985 टिल सच टाइम असम अकॉर्ड साइन हुए थे, वो भी आसू ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन लेड द एजिटेशन फ्रॉम दिस टू इंस्टीट्यूशन, कॉटन कॉलेज, उन दिनों कॉटन यूनिवर्सिटी नहीं होते थे, वो कॉटन कॉलेज एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. इस बार भी प्रोटेस्ट्स हैव बीन लेड बाय स्टूडेंट, तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन प्रॉब्ली विल बी डन बाय द विद्यार्थी कम्युनिटी ओनली.
ओके, सो यू सेइंग दैट इट्स अ सिमिलर पैटर्न?
वेरी सिमिलर पैटर्न.